प्रवचन सार, प्रवचन सुधा, लेक्चर नंबर 662. ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ नमः सिद्धेभ्य, ॐ शुद्धात्मने नमः. नमो अरिहन्तारम्, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाहूणं. सुर असुर नरपति वन्दने प्रविनष्ट घाति कर्मने प्रणमन करो हो धर्म कर्ता तीर्थ श्री महावीर ने वही शेष तीर्थंकर ने सिद्ध शुद्धास्तित्व ने मुनि ज्ञान द्रुग चारित्र तप वीर चरण संयुक्त ने ते सर्वने साथे तथा प्रत्येकने वंदुवणि हो मनुज क्षेत्र वर्तता अरहंतने अरहंतने सौसिद्धने या नमस्करण करिए रिते गणधरने अध्यापकोने सर्व साधु समूहने तसुशुद्ध दर्शन ज्ञान मुख्य पवित्र आश्रम पामिने प्राप्ति करो हो साम्यने जे नाति शिव प्राप्ति मने. आचार्य श्री कुनकुन भगवान द्वारा रचित यह प्रवचन सार नामक परमागम ग्रंथ है. उस पर अमृत चंद्राचार्य ने तत्व प्रदीपिका टीका लिखी हुई है तथा जयसेन आचार्य ने तात्पर्य युक्ति टीका लिखी है. इन पर गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के जो प्रवचन हुए हैं वे प्रवचन सुधा पुस्तक रूप से प्रसिद्ध हुए हैं. उसमें से आठवीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 44 पर हम आ गए. 44 हमने 187 नंबर की गाथा पढ़ी थी और अमृत चंद्राचार्य की टीका. अब हम जयसेन आचार्य की टीका पढ़ने जा रहे हैं 44 पृष्ठ पर. अथ यानी अब यथा द्रव्य कर्माणि निश्चयेन स्वयं एव उत्पद्यन्ते, जैसे द्रव्य कर्म निश्चय से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं, तथा ज्ञानावरणादि विचित्र भेद रूपेण अपि स्वयमेव परिणमन्ति इति कथयति. यानी जैसे द्रव्य कर्म निश्चय से स्वयं ही उत्पन्न होते हैं वैसे स्वयं ही ज्ञानावरणादि अनेक रूप से विविध रूप से परिणमते हैं, ये यहाँ बता रहे हैं. परिणमति यदा अप्पा, परिणमति यदा आत्मा, यानी आत्मा जैसे परिणमन करता है, कैसे समस्त शुभाशुभ परद्रव्य विषय परम उपेक्षा लक्षणम शुद्धोपयोग परिणाम मुक्त्वा यदा अयम आत्मा परिणति. अभी ये बताने के लिए शुभ अशुभ परिणमता है उसको बताने के लिए क्या बताया पहले में, शुद्धोपयोग रूप जो परिणाम है उसको छोड़कर, ये शुद्धोपयोग उसको नहीं हुआ है तो उसको छोड़कर कहते हैं. छोड़कर नहीं हुआ और छोड़ा ऐसा नहीं हुआ ही नहीं, उसको कहने के बदले उसको छोड़कर, उसको भूल कर. फिर से पढ़ते हैं. मैंने परद्रव्य के विषय में जो समस्त शुभाशुभ परिणाम है, समस्त शुभाशुभ परद्रव्य विषय, यानी परद्रव्यों को यहाँ शुभ और अशुभ ऐसे बताया, यानी समस्त परद्रव्यों के विषय में परम उपेक्षा लक्षण. परम उपेक्षा लक्षण इसका अर्थ क्या, उसकी बिल्कुल उपेक्षा कर दी, उससे विमुख हो गया. परद्रव्यों के तरफ से बिल्कुल हट गया, वो शुद्ध उपयोग परिणाम है। उसको छोड़कर परद्रव्य के विषय में लचा बचा रहा। यदा अयम आत्मा परिणमति, तो जब यह आत्मा परिणमता है, शुद्ध उपयोग को छोड़कर जब परिणमता है, वो किसमें परिणमता है? इति सुहम्मी असुहम्मी, शुभे अशुभे वा परिणामे, यानी शुभ और अशुभ परिणाम रूप से परिणमता है। कथम भूतः सन, क्या होता हुआ उस रूप से परिणमता है? तो कहते राग दोष जुदो, राग द्वेष युक्त परिणत इति अर्थ है, यानी राग द्वेष युक्त परिणत होता है, ये इसका अर्थ है। तम पविसदि कम्मरयम, तदा काले तत्प्रसिद्धम कर्मरजः प्रविशति, यानी उस समय जो प्रसिद्ध है, इसे जो कर्मरज है ना, कर्म वो प्रवेश करता है। कहि कृत्वा, क्या करके प्रवेश करता है? तो कहते ज्ञानावरणादि भावे ही, यानी ज्ञानावरणादि भाव रूप से प्रवेश करता है। उसके लिए अभी दृष्टांत बता रहे हैं। भूमे है मेघ जल संयोगे सती, यथा अन्य ही पुद्गला स्वयमेव हरित पल्लवादि भाव ही परिणमंती। क्या कहते हैं? भूमे है मेघ जल संयोगे सती, यानी मेघ का जल यानी बरसात, उसका संयोग होने पर जैसे भूमि में अन्य पुद्गल स्वयमेव हरित पल्लवादि भाव ही, यानी जिसको होंगे ना ग्रीनरी, यानी क्या है वो हरे पल्लव वगैरह उत्पन्न होते हैं, हाँ यानी नए नए, हाँ उत्पत्ति होती है, हरियाली की उत्पत्ति होती है। हमने कल देखा था ना, उसको क्या कहा था, पूरा छत्ता को इसके नाम लिया था ना उन्होंने, हाँ हाँ वो मशरूम जिसको कहा था, शादवल शीलिंग बताया था
पेज 47 पर,
47 पर बताया
बीच में गुजराती जो है,
और
पामेला शादवल शीलिंग इंद्र गोपादी भावे परिणमे छे, मिल गया
उसको कल एक शब्द आया था इसमें, हाँ कुत्रा जी छत्री, हाँ पर उसमें कल हिंदी में कुछ शब्द आया था कुकुर मुत्ता, छतरी छत्ता,
क्या फिर से
कुकुर मुत्ता, यानी हम कहते हैं उसको छतरिया, वो मशरूम को छत्ता भी कहते हैं, बिलाड़ी का टोप, अच्छा अलग अलग भाषा में अलग अलग उसके नाम आते हैं। हाँ कावड़ाच्या छत्र्या म्हणतात ना, इट्स फुल ऑफ निगोद आहे, हा मशरूम इज फुल ऑफ निगोद, हा क्या कहते निगोद आहे ना उसके अंदर, शेवाल जो है, शेवाल ये वो तो फूग, हाँ हाँ फूग जो होंगे लील फूग, हाँ तो वो भी निगोद है, हाँ और इसमें भी है, मशरूम में भी है निगोद। ये तो सभी ऐसे उत्पन्न होते हैं, ये सारे सब मूर्छन जीव ही है ना। देखो क्या कहते हैं, हरित पल्लवादि भाव ही परिणमती तथा, यानी ये तो दृष्टांत दिया, वैसे स्वयमेव नाना भेद परिणत ही मूलोत्तर प्रकृति रूप ज्ञानावरणादि भाव ही पर्याय ही इति, यानी जो कर्मजरज प्रवेश करती है तो क्या होती है, क्या करके प्रवेश करती है, तो स्वयमेव यानी स्वयं ही नाना भेद यानी अनेक प्रकार के भेद सहित ऐसे परिणति है, क्या होते हैं, मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति। मूल प्रकृति किसे कहना आशा, और उत्तर प्रकृति किसको कहना, मैंने ये आठ जो कर्म है उसको कहेंगे मूल प्रकृति, और उत्तर प्रकृति उसके भेद, हाँ पेटा भेद कहो सब डिविजन से, उसको कहेंगे उत्तर प्रकृति। तो स्वयं ही मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप यानी ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप वो परिणत होता है, उस पर्याय रूप से परिणत होता है। कौन? कर्म। आठ कर्म जो है सभी। देखो प्रश्न क्या था कि इतने प्रकार कैसे हो सकते हैं, तो जैसे कर्म स्वयं बनता है वैसे वो स्वयं आठ रूप से परिणमता है। मूल प्रकृति रूप कहेंगे तो आठ, उत्तर प्रकृति यानी होते हैं उसके 148 भेद कहो या असंख्यात लोक प्रमाण भेद कहेंगे, केवल ज्ञानी तो जानते हैं इतने सारे, तो ये उनकी स्वयं की अपनी परिणति है, यानी जीव उनको परिणमाता है ऐसा नहीं है। देखो इसी से क्या पता चलता है, परिणाम एक और इतने विविध कर्म बंधे, कोई पुद्गल ज्ञानावरणादि रूप हुआ, कोई दर्शनावरण रूप हुआ, कोई अंतराय रूप हुआ, इतनी विविधता क्यों? तो कहते निमित्त से कार्य नहीं होता, उसकी अपनी उपादान शक्ति है किस रूप से परिणाम है। ख्याल में आई बात? स्थिति की भी बात करते हम कहते ना इतनी स्थिति बांधी, वो इतनी स्थिति बांधी तो अंतिम निषेक है ना, जो सत्ता में जो परमाणु आते हैं वो तो हर समय उसमें से खिरते रहते हैं, और अंतिम टॉप मोस्ट जो निषेक है वो लास्ट में खिरेगा, उसकी स्थिति इतनी जो हम कहेंगे ना 70 कोड़ा कोड़ी सागर का मिथ्यात्व का उत्कृष्ट स्थिति बंध होता है, यानी अंतिम निषेक के परमाणु इतने समय रहेंगे, बाकी आबादा 7000 वर्ष की होगी उसकी, 7000 वर्ष और एक समय में जो निषेक है उसमें जो अनंत परमाणु है वो 7000 वर्ष और एक समय में खिरेगे। उनकी स्थिति कितनी थी? 7000 वर्ष और एक समय। किसी में 7000 वर्ष हाँ कैसे नहीं खिरेगी? खिरेगी ना उसकी स्थिति उतनी बंदी है। हम जो स्थिति कितनी बंदी तो हम टॉप मोस्ट की बात करेंगे, पर वो आबादा के बाद हर समय में निषेक पड़े हैं, यानी इतने अनंत अनंत परमाणु बंद है उनमें हर एक में अलग अलग स्थिति पड़ती है, परिणाम एक और स्थिति अलग अलग। ये हम तो निमित्त से नहीं होता इसको प्रूव करने के लिए करना नियोग के जो हर जो बातें होती है निमित्त की उसी से सिद्ध होता है कि निमित्त से कार्य नहीं होता, क्योंकि परिणाम एक तो सब में इक्वल होना चाहिए था पर ऐसा नहीं होता है। तत्व न्यायते इससे क्या जाना जाता है? यथा ज्ञानावरणादि कर्मणाम उत्पत्ति ही स्वयं कृता, जैसे ज्ञानावरणादि कर्मों की उत्पत्ति स्वयं कृत है तथा वैसे ही मूलोत्तर प्रकृति रूप वैचित्र्यम अपि होना चाहिए, दो म नहीं चाहिए, वैचित्र्यम अपि है ना। वैचित्र्यम एक ही म चाहिए, दूसरा म नहीं चाहिए। अच्छा हुआ मैंने इसमें से पढ़ा। यानी जैसे ज्ञानावरणादि कर्म की उत्पत्ति स्वयं में वो होती है, उनके अपने से होती है, वैसे ही मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति रूप जो विविधता है, वैचित्र यानी विविधता है, वह भी उनके अपने स्वयं कृत है। न च जीव कृतमिति, जीव ने उसको किया नहीं है, बनाया नहीं। ये तो हो गई अभी दोनों टीकाएं, अभी हम एक मिनट ओरिजिनल में है। हाँ इसमें हाँ हाँ इसको कहते ना प्रक्षेप गाथा जो होती उसमें भी है, पीछे 46 पेज पर देखना। यानी जो मूल यानी अमृतचंद्राचार्य की टीका में जो नहीं पाई जाती है और जयसेन आचार्य की टीका में पाई जाती है ऐसी कुछ, इसको प्रक्षेप गाथाएं है कहते हैं एक्स्ट्रा।
अब गुजराती पढ़ेंगे।
हाँ देखो अथ यानी अब पूर्वोक्त ज्ञानावरणादि प्रकृति नाम यानी ऊपर बताए हुए ज्ञानावरणादि प्रकृतियों के जघन्य उत्कृष्ट अनुभाग स्वरूपम प्रतिपादयति, उनका जघन्य अनुभाग और उत्कृष्ट अनुभाग का स्वरूप बता रहे हैं। सुहपयडीन विसोहि तिवो असुहान संकिले सम्मी विवरीदो दुजहन्नो अनुभागो सौ अपयडीनम्। अभी इसी का अर्थ उन्होंने नीचे दिया है, उसके नीचे ये बड़ा है दिखता है अनुभागो, यानी अनुभाग। कर्म में जो फलदान शक्ति है उसको कहते हैं अनुभाग, और वो अविभाग प्रतिच्छेदों में नापते हैं। फलदान शक्ति विशेष भवती इति क्रियाध्याहारः, यानी अनुभाग किसको कहते हैं, फलदान शक्ति विशेष जो है वो क्रिया अध्याहार कहते हैं उसको, क्रिया अध्याहार, यानी वो क्रिया बता रहे फलदान, फलदान की शक्ति। कथम भूतो भवती, वो कैसे होता है, तीव्रो तीव्र प्रकृष्ट परम अमृत समान है, तीव्र ने उत्कृष्ट जिसको कहेंगे, प्रकृष्ट कहा कि परम अमृत समान जो बताया है। कासाम संबंधी आप देखो, देखो आपको शायद याद नहीं होगा, ये जो अनुभाग बताते हैं ना, घाती कर्मों के अनुभाग के नाम मालूम है आपको, अनुभाग के चार नाम नहीं मालूम, घाती के पूछा मैंने, लता दारू अस्सी और शैल, ये घाती कर्मों के चार हुए। आघाती में दो, एक शुभ प्रकृतियाँ अशुभ प्रकृतियाँ, शुभ प्रकृतियों के नाम गुड़ खांड शर्कर और अमृत, ये सबसे अधिक अनुभाग वाले, और पाप प्रकृतियों के नीम कांजीर विष और हलाल, हलाल ये परम अमृत है। नहीं तो अतीन्द्रिय के अमृत की वो बात नहीं है। देखो क्या कहते हैं, कथम भूतो भवती, तर तीव्र होता है, प्रकृष्ट होता है, परम अमृत समान होता है। कासाम संबंधी, किनके संबंधी की बात चल रही है, किनके अनुभाग की बात चल रही है, कहते सुहपयडिनम सत वेद्यादि शुभ प्रकृति नाम, यानी साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों का अनुभाग। कया कारणभूतया, किस कारण से होता है, ते विशोही यानी विशुद्धि से होता है। कहते तीव्र धर्मानुराग रूप विशुद्ध्या, तीव्र धर्मानुराग विशुद्धि से ये सत उत्कृष्ट अनुभाग का बंध होता है, किसमें, साता वेदनीय आदि शुभ प्रकृतियों में। यहाँ तो बात समझ में आई। असुहान संकेले समय असद वेद्यादि अशुभ प्रकृति नाम तु मिथ्यात्वादी रूप तीव्र संकलेशे सती तीव्रो हालाहल विष सदृशो भवति, यह है ना विष और हलाहल, हाँ हलाहल नाम का विष है ना, सबसे कड़वाहट जो ज्यादा है उसमें, वैसे तीव्र अनुभाग वाले है।
इसमें हालाहल लिखा है,
हालाहल लिखा है, हलाहल भी आता है, पता नहीं हालाहल भी होता होगा संस्कृत में, यहाँ तो हलाहल, हम तो अभी तक हलाहल समझते थे, यहाँ हालाहल लिखा है,
हो सकता है संस्कृत में हालाहल कहते होंगे,
हो सकता है हाँ,
और अपने हिंदी मराठी में हलाहल,
हलाहल विष अभी तक तो, और कर्णान युग में भी हम हलाहल ऐसा ही यूज करते हैं नाम,
हिंदी है ना,
फिर भी देखो क्या कहते हैं, असद वेद्यादि यानी असाता वेदनी आदि, ये एक नाम लिया उसमें सारी अशुभ प्रक्रिया समझना, तो असाता वेदनी आदि अशुभ प्रकृतियों का मिथ्यात्वादी रूप, मिथ्यात्वादी यानी मिथ्यात्व कषाय वगैरह, तीव्र संक्लेशे सती तीव्र संक्लेश होने पर तीव्रो हलाहल विष सदृशो भवति, तीव्र हलाहल विष के समान होता है क्या अनुभाग, अनुभाग की बात चल रही थी ना, हाँ विवरीदो तु जघन्नो विपरीत तु जघन्यो गुणनिम्ब रूपो भवति, यानी इसके विपरीत जघन्य है, उत्कृष्ट के विपरीत जघन्य है, उसको क्या बताया, गुड़ और निम्ब, गुड़ है शुभ के लिए और निम्ब है वो अशुभ के लिए। अभी हमने चार नाम कौन से देखे थे पुण्य प्रकृतियों के लिए, गुड़ खांड शर्करा अमृत, अमृत है अमृत वो शुभ प्रकृति है ना, तो तीव्र अनुभाग वाली है उस, हाँ ये चार स्थान बताए, वो चतुस्थानिक कहते हैं उसको, चतुस्थानिक। और अभी पाप प्रकृतियों में क्या देखा था हमने, असाता वेदनी आदि में नीम कांजीर विष और हलार, तो यहाँ शुभ और अशुभ दोनों को एक साथ बताना था, इसलिए गुड़ और नीम दो नाम लिए, ये जघन्य के नाम है, जघन्य अनुभाग के लिए। तो जघन्य अनुभाग साता में आदि में गुड़ और असाता आदि में नीम, वो जघन्य है। असाता आदि में उत्कृष्ट का नाम क्या देखा था अभी? हलाहल। और साता आदि में उत्कृष्ट का नाम था अमृत। समझ में आई बात? नहीं समझे? देखो, अनुभाग बताने वाले परमाणु बंधे हैं कर्म के। अब उसको स्थिति बताने के लिए हम निषेक की रचना करते हैं, ये तो मालूम है। निषेक ने एक एक लॉट जो एक एक समय में खेलेगा, अब उसको भूल जाओ। अभी अनुभाग की रचना अलग से बतानी है, वो नीचे का निषेक के ऊपर का इससे कुछ लेना देना नहीं। सर्वत्र ऐसे सभी जगन्य उत्कृष्ट अनुभाग वाले पड़े रहते हैं। तो जैसे हमने निषेक की रचना नीचे से ऊपर दिखाते हैं, ऐसे अनुभाग बताने के लिए जघन्य से उत्कृष्ट तक। हाँ, पर वो सर्वत्र हो गए, ये जघन्य से उत्कृष्ट ऐसे प्रत्येक निषेक में रहेंगे, ऐसे हर एक निषेक में जघन्य से उत्कृष्ट रहेंगे। ये निषेक तो स्थिति को बताते हैं और अनुभाग की रचना अलग बतानी हमको, तो उसको हम जघन्य यहाँ लिखेंगे, उत्कृष्ट यहाँ लिखेंगे, पर वो निषेक की अपेक्षा नीचे ऊपर नहीं है। निषेक की अपेक्षा लेंगे तो ये जघन्य ये उत्कृष्ट है, समझ में ना? तो यहाँ जघन्य अनुभाग से लेकर उत्कृष्ट अनुभाग तक अलग अलग परमाणु पाए जाएंगे। तो जघन्य की ओर उसको स्पर्धकों में बताते हैं, क्योंकि अनेक परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहेंगे और अनेक अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहेंगे, स्पर्धक भी अनंत अनंत होते हैं, तो यहाँ स्पर्धकों में बात करेंगे। तो नीचे के कुछ स्पर्धकों को हम क्या कहेंगे? साता आदि में गुड़ वाले है ये, फिर उसके ऊपर थोड़ा अधिक अनुभाग है वो क्या है? खांड वाले। उससे ज़्यादा अनुभाग है कितना है उसको क्या कहेंगे? शर्करा। और एकदम तीव्र अनुभाग वाले उनको कहेंगे अमृत। ऐसे असात आदि में क्या नाम है? नीम, कांजीर, विष और हलाल। ख्याल में यही बात? यही बात उत्कृष्ट तक। हाँ, अधिक 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 अनुभाग की बात बता रहे हम, जघन्य से उत्कृष्ट तक बता रहे। देखो लिखना है आपको, क्या लिखा? शर्करा, गुड़, खांड, शर्करा और अमृत। हाँ, खांड शर्करा नहीं, वो खड़ी शक्कर है जो उसको कहना है, वो ज्यादा मीठी है। खांड यानी जो रेगुलर शक्कर है ना, वो खांड। और शर्करा यानी वो तो कड़ी शक्कर, यानी मिश्री जिसको कहेंगे ना, हिंदी में मिश्री कहते हैं, ये हम मराठी में खड़ी शक्कर कहते हैं। हाँ, गुजराती में भी कहते हैं। हम गए थे ना वो उधर यूपी में जाते थे, तो अपना कौन अशोक लोहड़िया, वो क्या कहते हैं, तुम्हारी शक्कर कहाँ खड़ी हो रही है? खड़ी शक्कर। उनको ये शब्द मालूम नहीं ना, खड़ी शक्कर।
अपन उसको खड़ी शक्कर नहीं कहते, मराठी में
खड़ी साखर, खड़ी साखर कहते हैं। हाँ, वो खड़ी साखर शब्द नहीं समझते हिंदी वाले। नहीं नहीं, बुरा है ना, बुरा अलग होता है, ये पूरा उसका पाक करके फिर उसको सुखाते हैं गैस पर, ये सिगड़ी पर, तो उसकी फिर ऐसे शक्कर तैयार होती है, जिसको कहते धोना, उसको शक्कर को धोकर फिर ये करते हैं ना, तो वो शुद्ध बताया जाता है, वो खाते हैं, ऐसे डायरेक्ट शक्कर नहीं खाते, वो बुरा कहते, बुरा बुरा नहीं, बुरा बुरस्व नहीं, बुरा। हाँ, बुरा है नहीं खराब, वो नहीं। पानी डाल के करते, दीर्घ कहेंगे बुरा, बुरा। इन्हें रेगुलर घर में भी ऐसी शक्कर वापरते, वो बुरा की ही वापरते खाने। नहीं, हम तो जाते हैं बहुत घरों में ये वापरते हैं डेली। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। हाँ, बहुत घरों में वापरते, हम जाते हैं ना अभी। हाँ, पर वही पद्धति है ना, वही पद्धति रोज के भोजन के लिए भी करते बहुत सारे लोग, उत्तर हिंदुस्तान में ज्यादा करते हैं, एमपी में वगैरह।
ये जो
हाँ डेली डेली
ये जो आप बात बता रहे हैं वो खास करके नॉर्थ इंडिया में विशेष रूप
से, हाँ एमपी में और नॉर्थ में,
हाँ यानी वहाँ तो ऐसा है कि गर्म पानी में ठंडा पानी नहीं डालते,
वो तो मिश्र दोष आता है ना उसमें।
दो अलग अलग टाइप के जीव, ठंडे पानी में अलग गर्म पानी में, एक साधा जीव तो कोई मरता है, यानी ये हमको मालूम नहीं था। अभी
ये मुनि की भी चर्या होती है ना, चलते हैं विहार करते हैं, अभी छाव में से धूप में आएंगे तो पूरा परिमार्जन यानी मार्जन करेंगे पीछे से, क्योंकि वो समूर्छन अलग टाइप के समूर्छन वहाँ आते हैं ना, जीव उत्पन्न होते हैं। हाँ देखो अभी हम पांचवी लाइन पढ़ रहे थे, छठी क्या पांचवी,
अरविंद भाई घबराना मत, क्रिया में धर्म नहीं है ये समझ,
फिर भी हमको पता चलना चाहिए ना कहाँ क्या है, कहाँ जीवों की उत्पत्ति होती है, कहाँ जीवों की हानि हो सकती है। हाँ देखो क्या कहते, जघन्य विशुद्धिया जघन्य संकलेश न च, यानी जघन्य विशुद्धि से और जघन्य संकलेश से, मध्यम विशुद्धिया मध्यम संकलेश न तू, और मध्यम विशुद्धि से मध्यम संकलेश संकलेश से शुभाशुभ प्रकृति नाम शुभ अशुभ प्रकृतियों के खंड शर्करा रूप कांजीर विष रूप स्थित। क्या कहते हैं, ये जो फुल स्टॉप है ना, देखो विवरी दो तू जघन्य शब्द आया, विपरीत तू जघन्य बुढ़ भवती, और वो भवती कहे से जघन्य विशुद्ध और जघन्य संकलेश न च, यहाँ फुल स्टॉप चाहिए होता। हाँ पहले वाला फुल स्टॉप निकाल कर वहां तक,
भवती के बाद का
नहीं, भवती के बाद वाला फुल स्टॉप निकालना,
वही तो मैं पूछ रहा हूँ।
जघन्य गुणनिम्बो भवती जघन्य विशुद्धिया जघन्य संकलेश न च, यानी जघन्य उससे बनता है, भवती के बाद का फुल स्टॉप निकालो और च के बाद डालो, यानी जघन्य गुणनिम्ब काय से बनता है, तो जघन्य विशुद्धि से और जघन्य संकलेश से, ये वाक्य पूरा हुआ। अब दूसरा वाक्य मध्यम विशुद्धिया यानी मध्यम विशुद्धि से और मध्यम संकलेश से शुभ शुभ शुभाशुभ प्रकृति नाम खंड शर्करा, यानी शुभ के खंड शर्करा दो लिए मध्यम में, खंड और शर्करा यानी खांड और शर्करा, और अशुभ के लिए कांजीर और विष। जघन्य का नाम क्या था, निम्ब, फिर कांजीर और विष मध्यम हो गए, और उत्कृष्ट था उसका नाम हलाहल। सातावेदने में जघन्य का नाम गुड़, मध्यम खांड और शर्कर, हाँ, और उत्कृष्ट अमृत, चार चार नाम देखे ना हमने। हाँ तो मध्यम विशुद्ध यानी मध्यम विशुद्धि से और मध्यम संकलेश से शुभाशुभ प्रकृतियों का खंड शर्करा रूप, ये शुभ का हुआ, और अशुभ का कांजीर विषय रूप इति एवं विधो, इस प्रकार से।
ये तू का अर्थ क्या लेने का,
परंतु यानी जघन्य संकलेश जघन्य विषय से गुण निम्ब रूप होता है, और तू यानी और के अर्थ में भी होता है, परंतु के अर्थ में हमें अशुभ प्रकृतियों का तो ऐसा तो के वैसा उसके बदले में ऐसा, यानी मध्यम विशुद्ध और मध्यम संकलेश से तो इस तरह से एवं विदो, इस प्रकार जघन्य मध्यम उत्कृष्ट रूप अनुभाग कासाम संबंधी भवती, तो कहते ऐसे जघन्य मध्यम और उत्कृष्ट अनुभाग किस संबंधी होता है, कहाँ पर, नहीं हमारे में नहीं है, एक मिनट, ये साथ में चाहिए, क्योंकि वो एक शब्द है ना उत्कृष्ट, वहीं से शुरू हुआ मध्यम और उत्कृष्ट, वो निकाल के वो एक शब्द करना, बीच वाली डैश निकालना और उसको जोड़ देना शब्द को, जघन्य मध्यमोत्कृष्ट। हाँ तासा मैंने उनके, हाँ देखो ये ऊपर जो है ना विशुद्धया हुआ है, विशुद्धया एक शब्द है, एक्चुअली वो जोड़ाक्षर होना चाहिए, जगन्य विशुद्धया, ध और य में जरा सा गैप है ना, वो वैसे गैप नहीं चाहिए, हाँ विशुद्धया एक जोड़ाक्षर चाहिए, दो तीन जगह आया हुआ होगा चलेगा, उसमें हम माहिर हैं। मैंने कहा उसमें हम माहिर हैं। दूसरे के यदि कासाम संबंधी यानी किनके संबंध में होता है, यहाँ कासा में ना, कासा मैंने किन के, तासा मैंने उनके, तो कहते सर्वोपयडिनम, सभी प्रकृतियों में ऐसा होता है, जगन्य उत्कृष्ट। कहाँ गया मेरा, एक एक मिनट, हाँ इधर ये बाजू है, हाँ सर्वोपयडिनम मूलोत्तर प्रकृति रहित निज परमानंद एक स्वभाव लक्षण सर्व प्रकार उपादेय भूत परमात्म द्रव्यात भिन्ना नाम, ये परमात्म द्रव्य से भिन्न कर्म के, कर्म को बताना था, तो कर्म क्या है, परमात्म द्रव्य से भिन्न है, ये परमात्म द्रव्य कैसा है, तो कहते कि मूल और उत्तर प्रकृति रहित और निज परमानंद एक स्वभाव लक्षण और सर्व प्रकार से उपादेय भूत, ऐसा जो परमात्म द्रव्य है उससे भिन्न और कैसे, हेय भूतानाम, जो हेय भूत है, क्या है, सर्व मूलोत्तर प्रकृति नाम इति, सभी मूल और उत्तर प्रकृतियों के, क्या सर्वपयडिनम का अर्थ किया, प्रश्न क्या था कि ये तो जघन्य मध्यम उत्कृष्ट अनुभाग किनके संबंध का था, तो कहते सर्व मूल और उत्तर प्रकृतियों के संबंध से, इति कर्म शक्ति स्वरूपम ज्ञातव्यम, इस प्रकार कर्म का शक्ति का स्वरूप जानना चाहिए, ये हो गई, ये एक्स्ट्रा का था इसमें। अब अपना प्रवचन पढ़ेंगे हम गुरुदेव का, पेज नंबर 45, ये गाथा नीचे लिखी उसके नीचे, ऐसा स्वतंत्र परिणाम है ना, वो पढ़ा नहीं था ना कल हमने, नहीं पढ़ा रहा, ऐसा स्वतंत्र परिणमन, सब द्रव्य का अपने से है, अपने से नहीं स्वयं से, अपने से ऐसा निर्णय हो तो परद्रव्य को परिणमाने वाला मैं ऐसा अहंकार उठ जाए, क्योंकि तो अहमपना इसको इतना है, एक तो शरीर मैं हूँ मानता ही है और ये सभी परद्रव्यों का कार्य मैं करता हूँ मानता है ना, यहाँ तो जहाँ तहाँ अहंकार करता है, मैं किया मैं किया मैं किया मैं किया भाई, यानी मैंने किया ऐसा मानता है, सब जगह मैं वो कहते हैं बकरी जैसा बकरी जैसा मैं करता है भाई, इसको तो मैं का अर्थ भी नहीं मालूम है, असली मैं को पहचाना ही नहीं उसने भाई, अथवा मैंने नहीं किया, मुझे आया नहीं, आया नहीं, आया नहीं, मुझे समझ में बराबर नहीं आया तो काम बिगड़ गया, मेरी समझ में नहीं आया तो काम बिगड़ गया, मूड है, कौन ऐसा कहता है, पर में बिगड़ना सुधरना तेरे परिणाम के कारण से है यानी नहीं है। अब ये हिंदी में सब जगह जो ज के बदले ज आया है, हमने उसको करेक्शन करना रख दिया ऐसा ही, मुझे समझ में आया। ये जो जहाँ आता है तो यहाँ गुजराती में ज लिखा है, वो ज झबले वाला ज चाहिए। हाँ, वो मैंने अभी नहीं बताया क्योंकि वो तो बहुत खंड होता है फिर पढ़ने में। क्या कहते हैं, पर का कार्य ना तेरे से तेरे होता ही नहीं, तो बिगड़ने का या सुधरने का सवाल नहीं है। वह तो जड़ की पर्याय अपने कारण से बिगड़ती और सुधरती है, कैसे होगा भाई? होशियार आदमी दुकान पर बैठे तो उससे फर्क पड़ता होगा कि नहीं भाई? उनके ध्यान नहीं है। हो गया आपका ये सब? आपको पूछ रहे हैं
क्या
आगे के पेज पर क्या लिखा है भाई? नहीं, नहीं।
कैसे होगा भाई, होशियार आदमी दुकान पर बैठे।
हाँ हाँ,
वही मैं मानता था एक जमाने। यानी अपने को होशियार समझता था।
प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र काम करे, उसमें तुम क्या करे? यहाँ तो कर्म की विचित्रता का प्रश्न किया है। विचित्रता यानी विविधता, अनेक रूपता। ज्ञानावरणीय में स्थिति रस का फेरफार हो, स्थिति तो स्थिति समझते ना, कितने समय तक रहेगा ड्यूरेशन, और रस यानी अनुभाग, उसका फेरफार हो, अपकर्षण हो उत्कर्षण हो, यानी ज्ञानावरण की स्थिति और अनुभाग कम या अधिक बनती है, या बंधने के बाद भी अपकर्षण यानी स्थिति अनुभाग घटने को अपकर्षण कहते हैं और उसके बढ़ने को उत्कर्षण कहते हैं। कर्म की स्थिति बढ़ जाए घट जाए, अनुभाग बढ़ जाए फेरफार हो जाए, एक प्रकृति दूसरे रूप पलट जाए संक्रमण हो जाए, क्या कहते हैं? यानी ये ज्ञानावरण व दर्शनावरण रूप से नहीं होगी। अपन मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन पर्य ज्ञानावरण, केवल ज्ञान, वो आपस में संक्रमित होते रहते हैं, वो तो चलता ही रहता है। दर्शनावरण की जो कितनी प्रकृतियाँ होती है मालूम? नौ। उनका आपस में संक्रमण होता रहता है। पूरे के पूरे टर्न नहीं होती है, थोड़े परमाणु इधर उधर होते रहते हैं। हाँ, अनंतानुवंदे में विसंयोजन हो जाए, ये मालूम है विसंयोजन क्या होता है? नहीं मालूम, लक्ष्मी को मालूम है, बाकी किसी को नहीं मालूम। याद है कि भूल गए? हाँ, अन्य प्रकृति रूप हो जाता है सजाती में, क्योंकि चौथे गुणस्थान वाला है, और वो अगर अनंतानुबंधी की विसंजन है ना, एक अंतर्मूर्त में सत्ता में से पूरे के पूरे नष्ट होकर अन्य जो बनती है ना, अभी चौथे वाले को अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यान संजलन बंद रहे, उसमें टर्न होकर नष्ट हो जाती है अनंतानुबंधी, उसको कहेंगे अनंतानुबंधी का विसंयोजन। अभी पांचवे वाला करेगा तो किस में जाएगी? प्रत्याख्यानावरण संजलन रूप से हो जाएगी, और मुनिराज अगर विसंयोजना करते हैं तो संज्वलन रूप हो जाएगी डायरेक्ट। केवल अनंतानुबंधी की ही विसंजना होती है, छठे गुणस्थान वाला अप्रत्याख्यानावरण की भी कर दे प्रत्याख्यानावरण, ऐसा नहीं होता, केवल अनंतानुबंधी की विसंजना। और विसंजना क्यों कहते हैं? उसको क्षय नहीं कहते, क्योंकि वो रिवर्सिबल प्रोसेस है। हाँ, संयोजन कब? नीचे के गुणस्थान यानी दूसरे में आवे या पहले में चला जावे, तो अनंतानुबंधी का नया बंध भी होगा, और जो उल्टा संक्रमण होकर उस रूप भी, क्योंकि वो बन रही है ना अभी, बाकी उसमें भी संक्रमित होंगे थोड़ी थोड़ी, ये थोड़े परमाणु इधर से उधर, ये तो चलता रहता है। हाँ, उसमें रूल है कि बंधने वाले में संक्रमित होता है, और सजातीय में संक्रमण होता है। सजातीय का अर्थ क्या है? कि ज्ञाना मूल प्रकृतियों में तो आपस में तो होता ही नहीं है, अब दर्शनावरण भी दर्शन मोहनी भी चारित्र मोहनी रूप नहीं होती, यानी मिथ्यात्व के परमाणु अनंतानुबंधी रूप हो जाए अन्य कषाय, ऐसा नहीं होता। चारित्र मोहनी है वो आपस में संक्रमित हो सकती, कषाय और नौकषाय में भी संक्रमण होता रहेगा। ये अनंतानुबंधी की विसंयोजना एक विशेष प्रोसेस है, यानी दर्शन मोहनी की क्षपना करता है उसके पहले भी, ये विसंयोजना करने के बाद करता है, तो वो अभी कायम हो गया ना। अगर दर्शन मोहनी की क्षपना नहीं की तो विसंयोजना वाला फिर मिथ्यात्व में आ सकता है, मिथ्यात्व का उदय आ जाए तो वहाँ आने पर फिर अनंतानुबंधी का नया बंध भी शुरू हो जाएगा और अवली काल में फिर अनंतानुबंधी का भी उदय चालू हो जाता है। तो यहाँ क्या कहते फिरते हैं, यानी कर्मों में क्या, हाँ हाँ विसंजना के लिए तीन करण परिणाम होते हैं और तीन करण परिणामों में अंतर मुहूर्त में एक बड़ा बड़ा लॉट है वो यानी कांडक रूप से अन्य प्रकृति रूप होते रहता है, एक अंतर मुहूर्त में वो कार्य पूरा हो जाता है। यानी कितनी अंत कोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण स्थिति के निषेक पड़े हैं वो सारे के सारे अन्य प्रकृति रूप हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाते हैं। यानी ये कर्मों में इतने सारी विविधता होती है, देखो पढ़ते हैं अनंतानुबंधी में विसंजन हो जावे, मिला सबको चौथी लाइन, इतनी विचित्रता पुद्गल में है। ये धवलादि शास्त्र में महाधवला में भी ऐसा पूछते हैं बारंबार कि पहले तीन करण परिणाम किए तो उपशम सम्यक तो हुआ और फिर दोबारा उसने किए तो अनंतानुबंधी की विसंजन में बाकी कर्मों पर कुछ नहीं असर हुआ, फिर श्रेणी के सन्मुख हुआ तो वो फिर श्रेणी चढ़ता है तो फिर द्वितीय उपशम किया, किसी ने क्षायिक किया, तो अलग अलग जगह करण परिणाम तो करता है और अलग अलग प्रकृतियों में ये कार्य होता है, ऐसा क्यों? कितने बार ऐसा पूछा ना उन्होंने, तो कहते ऐसा ही स्वभाव है और उस स्वभाव को तुम्हारे प्रश्न का क्यों का उत्तर देने के लिए वो बाध्यक नहीं है। यानी उस विशिष्ट विशुद्ध में वैसा ही उसी प्रकृति पर उसका असर होगा, अन्य पर नहीं होगा, ये कहना चाहते। देखो इतनी विचित्रता पुद्गल में है तो आत्मा के कोई परिणाम के कारण से उसमें होता है कि नहीं, तो क्या नहीं, हम निमित्त रूप से करेंगे तीन करण परिणाम करके उसने विसंजना की, बिल्कुल शास्त्र का वाक्य है, परंतु जीव ने विसंजना की ऐसा कहना ये निमित्त का उपचार का कथन है। वो कर्म के अपने स्वयं की योग्यता से उस समय वो कर्म परमाणु अन्य उस रूप हो गए, वो उनकी अवस्था पलटी, तो कहते आत्मा के कारण है, आत्मा करता है ही नहीं, वह पुद्गल के परमाणु की ऐसी योग्यता से विचित्रता होती है। आत्मा का परिणाम अशुद्ध परिणाम निमित्त मात्र है, कल बात आई ना कर्म उनको निमित्त बना के स्वयं परिणमता है, शुभाशुभ अशुद्ध परिणाम निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र होने पर भी जिस परमाणु में ज्ञानावरणीय होने की लायकात थी वे ज्ञानावरणीय हुए, जिसमें शाता होने की लायकात थी वे शाता रूप हुए, अशाता होने की लायकात वाले अशाता रूप हुए, नाम कर्म में यश कीर्ति के पर्याय होने वाला परमाणु वह हुआ, गोत्र का परमाणु परिणमने वाला था तो वह हुआ, परमाणु की पर्याय में ऐसी योग्यता से उस पुद्गल से हुआ है, आत्मा से नहीं। ओहो भारी बात भाई, बड़ा सिद्धांत, यानी बहुत महत्व का सिद्धांत है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध होने पर भी कार्य तो उपादान से ही होता है और प्रत्येक द्रव्य का अपने में अपने से होता है, ये निमित्त आया इसलिए ऐसा हुआ, अगर निमित्त दूसरा आता तो दूसरा कार्य होता, ऐसी बात वहाँ नहीं होती। हम कहते हैं ये निमित्त नहीं होता तो हमारा अच्छा कार्य होता है, ये कहने की पद्धति है ना, और कहाँ किसकी बात ढूंढते हैं, निमित्त की, कहाँ जाना चाहते हैं मरकर? अरे देवगति ने डायरेक्ट सीमंदर क्यों महाविदे में, हाँ महाविदे में क्यों क्यों बोलो क्यों, हाँ दीक्षा लेंगे डायरेक्ट, अच्छा तो सीमंदर ही क्यों, जुगमंदर बाहु स्वभाव संजाते स्वयं प्रभु ऋषभानंद कोई नहीं चल, हाँ ये कौन किसने बताया पास में, वो तो उत्तर की तरफ है, अरे दक्षिण के, हाँ पूर्व में उत्तर की तरफ है, पूर्व के दक्षिण वाले हमारे नजदीक है, जुगमंदर नजदीक है ज्यादा और जैसे सीमंदर जुगमंदर बाहु सुबाहु बाहु भी नजदीक है तो उधर क्यों दौड़ते हैं क्योंकि वो पहला नाम लेते हैं तो उन्हें का, हाँ कुंदकुंदाचार्य वहां गए थे, हाँ क्या कहते हैं, ये नहीं हमने सुन के रखा है, यही भ्रमणा चलती रहती है, हमको वहां जन्म लेना है।
लेकिन पास और दूर ऐसा कुछ है ही नहीं।
अरे मर के जाना है ना, उसमें क्या है, एक समय पे पहुंच जाता है।
उसमें ऐसा है, कुंडकंद आचार्य सिमंदर परमात्मा
नहीं, उनका कहना है श्वेतांबर में भी बहुत है, सिमंदर के पास जाना है, सिमंदर के पास जाना है।
दूसरी बात यह है कि
वो पहला नाम है इसलिए फिर लेते हो,
बाकी के लोगों के नाम ही मालूम नहीं। इसलिए
ऐसा ही है।
और आपने
फिर भी पहला नाम वो सारे वर्तमान है, विदेह क्षेत्र के 20 जगह 20 अभी विद्यमान है, सारे ही अभी अरिहंत अवस्था में तीर्थंकर है, सारे विद्यमान है वो, फिर भी उनका एक का नाम लेते, ये मैं कह रहा हूँ। अन्य किसी का अभिनय नहीं करना है, परंतु उन्हीं का नाम चलता है ना, लोग उन्हीं को मानते हैं, उनका
पता।
ये लोगों की भ्रमणा है, क्या करें, वो तो मान लिया ना, वो कुछ भला करेंगे, संकट विमोचक है, नाम दे दिया उनको।
आप तो कह रहे हैं कुंद कुंद गए, स्वामी जी भी गए, ऐसा उनके कथन में आता है, तो इसलिए हम भी जाएंगे। स्वामी जी के हम
चले, भी वहाँ से आए हैं, गए कहाँ?
अरे भाई जाके आए ना वहाँ
से,
इसलिए आने का नाम नहीं लिया,
वहाँ से मर कर आए। हाँ
तो पहले तो स्थानकवासी थे, तो स्थानकवासी में भी नाम लेंगे, सिमंदर सिमंदर, या अपन इमेजिन करना है। सत्य बात तो आपने बताया ना, हर एक व्यक्ति की बात अलग है।
हाँ देखो अभी आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ब्रह्मणा को कोई अंत नहीं है। देखो ये परमाणु के पर्याय में वैसी योग्यता है, वो अपने से होती है, आत्मा से नहीं। पेज नंबर 47 पर आते हैं, देखो
लास्ट लाइन,
दुकान में यही पढ़ना है ना, दुकान में होशियार आदमी माल जमा दे, ऐसे ऐसे दिखाव करे, ऐसे जमाए ऐसे जमाए, बर्तन जमाते ना, वह रचना आत्मा कर सकता है कि नहीं, करे नहीं, फिर प्रश्न कहाँ है। वो समझता ना, मैं यहाँ दुकान चलाऊँ तो बहुत अच्छा होता है, अपने परिणाम करने का आत्मा को हक है, शुभ या अशुभ परिणाम जो भाव करे उसका अधिकारी है यानी मालिक है, परंतु पर परिणाम में कुछ कर दे ऐसा आत्मा में अधिकार तीन काल तीन लोक में है नहीं। देखो अभी यहाँ तो अशुभ परिणाम जो है वो करने का यहाँ उसको अधिकार बताया है, अज्ञानी है ना, और यहाँ जो विषय चल रहा है आत्मा का परिणाम है, शुभ अशुभ भाव को यहाँ लिया है। भगवान त्रिलोकनाथ वीतराग देव की वाणी का सार लेकर कुंदकुंदाचार्य देव ने प्रवचन सार बनाया, तो कहते हैं कि कर्म की विचित्रता उसके कारण से है, दूसरे में कहाँ आए, कहो भाई डिजाइन करते हैं कि नहीं, पत्थर में भी डिजाइन होती है, डिजाइन ऐसी करनी है ऐसी करनी है, उसकी विचित्रता, डिजाइन करने वाला कौन है, पत्थर में ऐसी छोटी छोटी कणी, कोई सफ़ेद कोई हरी कोई पीली कणी उसमें डालते हैं कि नहीं, तो डिजाइन में विचित्रता करने वाला कौन है, कहते आत्मा बिल्कुल नहीं करता, वो कुरस्व करना बिल्कुल, आत्मा तो अपने परिणाम का करता है। यानी कोई भी कारीगरी चलती है, गुरुदेव हमेशा उदाहरण देते ना, वो वहाँ परमागम मंदिर का वो काम तभी चलता था, तो सब वो मशीन से करते थे, फिर उसके अंदर वो कलर भरना वगैरह वगैरह, तो कहते ये कौन करता है। उसकी जानकारी वाले आदमी को रखना कि नहीं रखना, इन्होंने पूछा होगा अपने राम जी भाई, क्योंकि हम लोग स्पेशल कारीगर को बुलाते ना करने के लिए, तो उसने किया कि नहीं, वो नहीं करता तो उसको क्यों बुला रहे, उसको क्यों इतना पैसा दे रहे, पूछ रहे। समाधान कौन रखता है। क्या पूछा, उसको रखना कि नहीं रखना, अरे वो करता है कि नहीं बात छोड़ दो, उसको कौन रखता है बोला उसका निमित्त भी सुनिश्चित है कि नहीं है, ये कह रहे। यहाँ तो भगवान कुमकुंदाचार्य महाराज ऐसा कहते हैं कि भैया तुम आत्मा शुद्ध चिदानंद ज्ञाता आनंद कंद हो, उसकी दृष्टि छोड़कर तुम तुम्हारी पर्याय अर्थात अवस्था में शुभाशुभ परिणाम करो, मलिन परिणाम का करने वाला हो। कौन करता है तो कहते जिसको उसकी दृष्टि नहीं है वो शुभाशुभ परिणाम कर रहा है, परंतु कर्मबंध में विचित्रता होती है, वह तुम्हारा कर्तव्य नहीं, तुम निमित्त मात्र हो, कर्ता फर्ता नहीं हो। हमेशा आता है अज्ञानी को राग का कर्ता कहो तो कहो, परंतु पर का कर्ता नहीं कर्म का कर्ता तो अज्ञानी भी नहीं होता। ज्ञानी के तो बात छोड़ो, अज्ञानी भी नहीं होता। कहते हैं ना कषाय के प्रमाण में स्थिति और अनुभाग बनते हैं, और योग के कारण प्रकृति और प्रदेश बनते हैं। वह तो निमित्त का कथन है, प्रकृति या प्रदेश अपनी योग्यता से है, योग तो निमित्त मात्र है, कषाय निमित्त मात्र, ये तो मालूम है ना। बंद होता है तो चार प्रकार से बंद होता है, कौन सा? प्रकृति बंद, प्रदेश बंद, स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो प्रकृति बंद और प्रदेश बंद योग से होता है। हाँ, स्थिति कषाय, कषाय कहें मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय, सब कषाय में आ गए। पांच कारण है बंद के, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय और योग। तो योग को अलग रखो तो ये सब चारों मिलकर कषाय कहने में आता है। नहीं तो कषाय से बंद होता है, मिथ्यात्व से कुछ नहीं होता, ऐसा कहने वाले भी है, ऐसा नहीं है। हाँ देखो, रेशा किसको कहिए, कषाय प्लस अनुराग, यानी रेशा से बंद होता है। दूसरी भाषा में कहा ना, कषाय से अनुरंजित योग, यानी योग प्रवृत्ति होती है उसको, यानी योगों की प्रवृत्ति, उसको लेशा कहते हैं। यानी कषाय प्लस लेशा योग मिलकर लेशा होती है, तो लेशा से बंद होता है। यानी बात एक ही है, कषाय और योग से कहो या अकेले लेशा से कहो, बात एक ही है। हाँ देखो, वो तो कषाय निमित्त मात्र है, कषाय में मिथ्यात्व और राग द्वेष सब आ गए, लिखा नहीं यहाँ पर। देखो देखो, कर्णानियोग की कितनी डिटेल में बात है। कर्म जड़ है, उसमें विचित्रता की योग्यता है, उसके अनुसार कर्म बन जाते हैं, तेरा कर्तव्य उसमें है नहीं, ये 187 गाथा में कहते हैं। देखो जैसे नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, यानी बरसात होती है और वो जल भूमि पर पड़ता है। देखो नया मेघ आषाढ़ में होता है ना, आषाढ़ मास में नया मेघ होता है, वर्षा होती है ना, वर्षा, नए मेघ जल के भूमि संयोग रूप परिणाम। देखो नए मेघ के जल के भूमि संयोग रूप परिणाम के समय, परिणाम के समय इतना, अन्य पुद्गल परिणाम, दूसरा जो पुद्गल है वह स्वयमेव वैचित्र्यता को, वैचित्रत्य को हुआ है, वैचित्र्यता को चाहिए, त्रत्य हुआ है, वैचित्र्यता, त्र को यह लगाना, वैचित्र्यता, स्वयमेव, क्योंकि देखो पहले एकदम जमीन सूखी थी तो पहला मेघ यानी वर्षा होती है तो हरियाली वगैरह स्वयं में वो चालू हो जाती है, इसलिए, क्योंकि नहीं तो पहले थी ना, नहीं हुई आपको कैसे पता चलेगा। अभी बरसात के दिनों में तो होती रहती वर्षा, तो नया अंकुर आएगी तो वो भी आपको नोटिस नहीं होता है ना, इसलिए नया बताया। समझ में क्या करना है, त्रिय करना, त्रियता, त्रिय और ता। हाँ त्रियता, स्वयं में वो वैचित्र्यता को प्राप्त होते हैं, परिणाम तो निमित्त मात्र है। कौन यानी कौन परिणाम? भूमि संयोग में जल का परिणाम और अन्य पुद्गल है, वह अपने कारण से परिणमता है। यहाँ तो क्या हुआ, जल का और भूमि का संयोग हुआ, और वहाँ अन्य ही पुद्गल वो हरियाली वगैरह रूप से परिणमित हो गए। देखो वनस्पति आदि उसी प्रकार, क्या कहा, नए मेघ के जल से भूमि संयोग का परिणाम, बस इतना। उस काल में, उस समय में अन्य पुद्गल विचित्रता को धारण करते हैं, उसका कर्ता मेघ जल नहीं, समझ में आया। उसी प्रकार आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय बस जीव ने शुभ शुभ भाव के पुण्य दया दान भक्ति पूजा यात्रा आदि शुभ भाव है, हिंसा झूठ चोरी विषय आदि अशुभ भाव है, दोनों शुभ अशुभ भाव किए, उस समय कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं। देखो मोक्ष मार्ग प्रकाशक में भी पंडित रोडमल जी ने उदाहरण दिया ना कि सूर्य के उदय में चकवावक्ष चकवी स्वयमेव मिलते, रात के अंधकार में किसी ने उनको बिछोड़ा नहीं था, स्वयमेव बिछुड़ गए, और सूरज उगता है तो स्वयमेव मिलते हैं, उनको कोई आकर मिलाता नहीं है, तो उसका निमित्त पाकर स्वयं वो कार्य होता है। वैसे ही यहाँ पर हर एक में लगा लेना, जैसे नए मेघ का जल भूमि संयोग के समय अन्य पुद्गल अपनी विचित्रता के कारण भिन्न भिन्न परिणमते हैं, यानी उनके विविधता के कारण, ऐसे आत्मा के शुभाशुभ परिणाम के समय जीव ने शुभाशुभ परिणाम किया, बस इतनी बात है। उसी काल में कर्म पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं, यानी आत्मा में आत्मा ने कर्म में कुछ नहीं किया, आत्मा तो अपने में परिणत हुआ और कर्म स्वयं विविधता को प्राप्त हुए। आत्मा के परिणाम समय पुद्गल अपनी विचित्रता को प्राप्त होते हैं। मुमुक्षु ने कुछ बीच में कहा, पूज्य गुरुदेव जी कहते हाँ सब होता है ना, देखो ना नाम देते हैं, बिल्ली का टोप होता है, हाँ ये आया ना गुजराती शब्द, वही मशरूम, मराठी में कावड़ाची छतरी कहते उसको, कावड़ाची छतरी, कौवे की छतरी, बिल्ली का टोप नहीं होता, ऐसा गोल चक्कर होता है, वो उसकी विचित्रता का कारण है, पानी का नहीं, पानी तो निमित्त मात्र है। ऐसे दीवारों पर वगैरह आते ना गीली, तो गांवों में तो बहुत आता है ऐसा, पानी तो निमित्त मात्र है, पानी को भूमि का संयोग उस प्रकार का हुआ, और कोई पुद्गल कैसा, कोई कैसा, कोई कैसा, कोई थोर होता है, नीम होता है, ये थोर समझते, कैक्टस जात की वनस्पति, ये एलोवेरा उसको थोर कहते हैं, नीम होता है, कोई लाल पीले काले फूल होते हैं, ऐसे अनेक प्रकार होते हैं, इनको कौन करता है, जल, नया जल करता है नहीं, ओहो हो जल नहीं करता है तो पहले क्यों नहीं हुआ, पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्या कहना चाहते, वो बरसात के पहले तो नहीं था और अभी क्यों हुआ, प्रश्न तो हर एक है ना, निमित्त ही दिखता है, बिना पानी के देखो कैसे होता है, सूखी जमीन पर तो नहीं था, अभी जमीन गीली हुई, दीवारें गीली हुई तब तो आया ना उसके ऊपर, देखो जब मेघजल आया तो हुआ, सुनना उस समय शब्द तो कहाँ है, ऊपर काल लिया है, उस काल में अपना परिणाम किया है, उसी काल में उसने उसका परिणाम किया है, उसमें उससे यहाँ हुआ, ऐसा यहाँ कहाँ आया, आहा निमित्त तो है कि नहीं, पहले क्यों नहीं हुआ, यानी पूछने वाले ऐसा ही करते हैं कि निमित्त है कि नहीं है, पहले नहीं हुआ था अभी हुआ कि नहीं, मेघ जल नहीं हुआ था तब मैदान था, वो आता है ना क्या कहते हैं लाल कीड़े इंद्रगुप्त, आता है कि नहीं, मखमल जैसा कीड़ा होता है, पहले क्यों नहीं हुआ अभी क्यों होता है, योग उसी काल में क्यों हुआ, इसलिए पानी का निमित्त है नहीं उसके ना कहते, उस काल में नए मेघ के जल का भूमि संयोग हुआ इतना बस। उस समय पुद्गल अपने कारण से वहां विचित्रता को धारण करता है। ओहो हो, जगत को बात गले उतारनी कठिन पड़ती है। लोग प्रश्न ऐसा करते हैं कि पहले क्यों नहीं हुआ, अभी क्यों हुआ, उस समय जल आया तो क्यों लाल हुआ। भगवान कुंदकुंदाचार्य देव कहते हैं, उस समय उसकी ऐसी परिणमन की योग्यता से हुआ है, इसके समय हुआ है। पुद्गल परिणाम वास्तव में स्वयमेव विचित्रता को प्राप्त होते हैं। लोग जीव ने शुभाशुभ भाव किए, कर्म की विचित्रता की योग्यता से वहाँ कर्म बंधन में स्थिति रस की विचित्रता हो गई, यानी स्थिति अनुभाग अलग अलग प्रकार के हुए उसके अंदर। मेघ जल के पानी का निमित्त मात्र है और भूमि आदि हुआ उसकी अपनी योग्यता से हुआ है, कोई दूसरे हुआ नहीं। ये यहाँ प्रवचन समाप्त होता है। कल नया प्रवचन हम ले लेंगे इसी गाथा का 50 पेज पर। चावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तकनम सदा देत हो। नेहा भी